अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अज़ीज़ हाज़िर है आपकी दुनिया के दूसरे घंटे के साथ। हमारी प्रोड्यूसर इस वक्त भी यास्मीन जमील हैं और इंजीनियर हैं निक एवनॉफ। तो सबसे पहले सुर्खियां। सदर ट्रंप ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इतवार के रोज़ मुहर्रम उल हराम के जुलूस में शिरकत करने वाले शिया मुसलमानों और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़पों के बाद मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। हांगकांग में मुजाहरे जारी हैं। अमरीकी कौंसिल खाने के सामने मुजाहरा किया गया और बरतानिया की सियासत बहरान की जद में यूरोपीय यूनियन ने इनखिला के मसले पर वजीर आजम की काबीना के एक रुकन वजीर ने बतौर एहतजाज इस्तीफा दे दिया। और समंदरी तूफान अब कैनेडा के साहिलों से टकरा गया। तो अब तफसील से खबरें। अमरीकी सदर ट्रंप ने तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं। इस फैसले पर तश्वीश का इजहार किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ अपने कई ट्वीट पैगाम में वजाहत की कि उन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात क्यों मुअत्तल किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तालिबान लीडरों और अफगानिस्तान के सदर के साथ कैंप डेविड में मुलाकात तय थी, जिसके लिए वो हफ्ते के रोज़ अमरीका पहुंचने वाले थे। सदर ट्रंप का कहना है कि मुज़ाकरात की तब्दीली का फैसला तालिबान की जानिब से काबुल में हमले के बाद किया गया, जिसमें एक अमरीकी फ़ौजी समेत 12 अफराद हलाक हुए थे। सदर ने सवाल किया कि तालिबान आखिर और कितने अशरों तक लड़ने चाहते हैं। दूसरी तरफ आयशा तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अफगान तालिबान ने सदर ट्रंप के इस फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में मुअत्तल किए गए जब दोहा में अमन मुज़ाकरात किसी नतीजे तक पहुंच चुके थे और तालिबान के दूसरे धड़ों से बातचीत के लिए राह हमवार की जा रही थी। हमारी नामा निगार के मुताबिक तालिबान ने इतवार को पश्तो ज़बान में दिए गए एक बयान में कहा है कि वो अपनी लड़ाई उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक अमरीका मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादा नहीं होता। अफगान शहरियों और सियासतदानों ने इस फैसले पर तश्वीश जाहिर की है। काबुल के एक शहरी काजमी ने कहा कि मिस्टर ट्रंप के फैसले से खुदकुश हमलों और सूबों में झड़पों में इजाफा होगा, शहरियों की जिंदगियां मजीद खतरे में पड़ जाएंगी, इसलिए हम सबको तश्वीश है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। अफगानिस्तान के ही एक साबिक नायब वजीर का कहना है कि ये दोबारा शुरू हो सकते हैं मगर फौरी तौर पर यह मुमकिन नहीं होगा। उनके अपने अल्फाज में, मेरे ख्याल में लड़ाइयों में मजीद शिद्दत पैदा होगी, हालात बदतर हो जाएंगे क्योंकि तालिबान इस पर जारहाना रद्द अमल का इजहार करेंगे और अपना जिहाद जारी रखने का अज़्म जाहिर करेंगे। उधर काबुल से सदर अशरफ गनी के दफ्तर से एक बयान में कहा गया है कि अमन मुहिदा इसी सूरत में पायदार हो सकता है जब तालिबान पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बंद कर दें और अफगान हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात करें। सामिन, अब से कुछ देर पहले बहजत जिलानी के साथ आपने इस मौजू पर तफसीली तजिया भी सुना था, इसी तरह कश्मीर के मसले पर भी। खबर मैं एक दफ़ा फिर आपको सुना दूं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुहर्रम उल हराम के जुलूस में शिरकत करने वाले मुसलमानों और सिक्योरिटी फोर्सेज में टकराव के बाद इतवार के रोज़ श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने ऐनी शाहिदों और हुकूमती एहलकारों के हवाले से बताया है कि हफ्ते की शाम को होने वाली झड़पों के नतीजे में कम अज़ कम 12 मुकामी शहरी और 6 जवान जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुलूस को रोकने की कोशिश की और जब उसने रुकने से इनकार किया तो उस पर अशकावर गैस के गोले छोड़े गए और उन्हें पैलेट गनों से निशाना बनाया गया। इसके बाद हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर पथराव किया। टकराव के वाकया श्रीनगर के शिया अक्सरियती इलाकों रीनावाड़ी और बडगाम में पेश आए। मुसल्ला जवानों ने, जो हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, 5 किलोमीटर जुलूस के आगे रुकावटें खड़ी कर दी थीं। इतवार के रोज़ पुलिस गाड़ियों से लाल चौक और अतराफ में कर्फ्यू जैसी पाबंदियों का ऐलान किया गया और लोगों से घरों में रहने को कहा गया। कौमी सलामती के मुशीर अजीत ने कहा कि अमन व अमान और लोगों के तहफ़ के लिए पाबंदियाँ ज़रूरी हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 के खात्मे के खिलाफ एहतजाज की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पाबंदियाँ बतदरीज उठाई जा रही हैं और सिर्फ 10 थाना इलाकों में महदूद पाबंदियाँ हैं। उन्होंने पाकिस्तान को मोरदे इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि अगर वो दहशतगर्दों को भारत में दाखिल करने की अपनी रविश तर्क कर दे तो पाबंदियां बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा सबल ने इनके इस बयान पर सख्त एतराज़ किया है और कहा है, उनके अल्फाज, अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है तो उसकी सज़ा कश्मीरी आवाम को क्यों दी जा रही है? क्या जब तक पाकिस्तान सरगम रहेगा उस वक्त तक वहाँ के लोगों को बंद किया रखा जाएगा? याद है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के भारत के इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करता आया है कि वो कश्मीरी लेकिन उसका कहना है कि वो कश्मीरी आवाम की खुद इरादियत की लड़ाई में उनकी हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। वो दफ़ा 370 के खात्मे की भी सख्ती से मुखालफत कर रहा है। और इसी असना में चीन ने कश्मीर की सूरत हाल पर किसी भी यकतरफा कदम की मुखालफत करते हुए कहा है कि मुतनाज़ वादी की हैसियत में तब्दीली तनाज़े को मज़ीद उलझा देगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान उनके इस्लामाबाद के दौरे के अख्तिताम पर सामने आया है। इस्लामाबाद से अली फुरक़ान की रिपोर्ट।
चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी के दो रोज़ा दौरा इस्लामाबाद के बाद मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि चीन जम्मू व कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि कश्मीर का मामला तारीख का हल तलब तनाज़ा है। एलामिया के मुताबिक चीन ने इस बात पर जोर दिया है कि कश्मीर तनाज़े का हल अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर, सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों और दो तरफ़ा माहिदों की रोशनी में निकाला जाना चाहिए। ये मुश्तरका बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत की जानिब से कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद इस्लामाबाद और नई दिल्ली में कशीदगी पाई जाती है। वांग ज़ी ने अपने दो रोज़ा दौरे इस्लामाबाद के दौरान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान की फ़ौज के सरबरा कमर जावेद बाजवा से अलग अलग मुलाकातें की। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हुकाम के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते और आलमी सूरतहाल पर तबादला ख्याल किया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन को कश्मीर से मुतल्लक अपने मौक़िफ़ और इंसानी हकूक की बदतरीन सूरतहाल पर तशवीश से आगाह किया। साबिक सफीर जफर हिलाली कहते हैं कि चीन की जानब से भारत के कश्मीर की हैसियत में तब्दीली के इकदाम की मुखालफत का मतलब ये है कि वो भारत से कह रहा है कि आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी वापस लें। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए जफर हिलाली ने कहा कि मुश्तरका एलामिया से साबित हो गया है कि भारत को अगर 1% भी उम्मीद थी कि चीन कश्मीर की खसूसी हैसियत में तब्दीली को दो तरफा इकदाम करार देकर नजरअंदाज कर देगा तो वो नहीं हो सका।
उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो एक्शन है 370 और 35A ये गलत है, इनको वापस लेना चाहिए। अगर 1% भी उम्मीद था हिंदुस्तान को कि चाइना भी बायलैटरल इश्यू करके इस मामले को खत्म करें, वो गलत है। इस किस्म के यूनिलैटरल एक्शन इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट और बायलैटरल एग्रीमेंट ये गलत है, ये इंटरनेशनल मामला है, ये बायलैटरल नहीं है।
पाकिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए तावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है और अफगानों की ज़ेरे क़यादत अफगानों की जानब से मफाहमत के अमल की हमायत की गई है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त को सराहते हुए बैनुल अफगान मुज़ाकरात पर जोर दिया है ताकि अफगानिस्तान के मसले का ऐसा हल निकाला जा सके जो तमाम फरीकैन को काबिले कबूल हो। वाज़े रहे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के सह मुल्की मुज़ाकरात का तीसरा दौर गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में हुआ था जिसमें बाहमी तलुकात और अफगान अमन अमल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ, जबकि तीनों मुल्कों ने मिलकर इंसदादे दहशतगर्दी के लिए मजीद इकदामात करने पर इत्तफाक किया। अली फुरक़ान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
इसी असला में अमेरिका के दौरे पर आए हुए सूबे सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा है कि दौरे से पहले कश्मीर के मामला सामने आए तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने खसूसी ताकीद की कि अमरीका के दौरे में कश्मीर का जिक्र लाजमी तौर पर हर जगह किया जाए। इस वक्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह कश्मीर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त सब यही कह रहे हैं कि कश्मीर में आज़ादाना नकल व हरकत की इजाज़त होनी चाहिए, इसलिए वहाँ से कर्फ्यू का खात्मा किया जाए। ज़रा इबलाग को आज़ादी होनी चाहिए कि वह हालात को रिपोर्ट करे जबकि आज़ाद मुबसरीन कश्मीर के हालात जाकर दें। इसके बाद ये मामला अक़वामे मुत्तहिदा के क़रारदादों के तहत हल करने के इकदाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता पाकिस्तान और भारत में अमन कायम नहीं हो सकता। अमरीकी कानून साजों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ अरकान कांग्रेस कश्मीर के हवाले से करारदाद लाने को तैयार हैं। इमरान इस्माइल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, भारत से मुज़ाकरात करने के मसाइल को हल करने के ख्वाह हैं, लेकिन सबसे पहले कश्मीर में अवाम पर मजालिम बंद किए जाएं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क के हर खित्ते की तरजीह एक ही है और वो कश्मीर है। पाकिस्तान के नुमाइंदे दुनिया में जहाँ जा रहे हैं वो कश्मीर को उजागर कर रहे हैं। सूबाई मसाइल, अपना शहर, कारोबार और दीगर मामलात इसके बाद आते हैं। उन्होंने बरतानवी जरीदे की एक रिपोर्ट को, जिसमें उसने कहा था कि कराची को रहने के काबिल शहरों में इंतहाई निचले दर्जे पर है, مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کراچی میں جو خرابیاں ہیں انہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی زندگی سے بھرپور شہر ہے، جبکہ یہ ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا شہر ہے، اس لیے جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ کوئی ان کا اپنا سروے ہوگا۔ کراچی کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے اقدامات پر گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں رائج نظام کے تحت تمام ذمہ داریاں صوبائی حکومت کی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جبکہ صوبے میں ایک اور جماعت پر سر اقتدار ہے، اور یہ اس جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبے کے مسائل کو حل کرے۔ کراچی کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ شہر کے میئر کا تعلق ایک اور جماعت ایم کیو ایم سے ہے، یہ تھوڑے سے معاملات سامنے آ رہے ہیں لیکن امید ہے کہ مسائل حل کر لیے جائیں گے۔ چلتے ہیں ایک بار پھر کشمیر کی صورتحال پر۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں خود مختار کشمیر کی حامی تنظیم کے ہزاروں افراد کو پولیس نے ایل او سی پر پہنچنے سے روک دیا۔ پولیس کے ساتھ تصادم میں درجنوں مظاہرین اور پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کی طرف سے 30 کے قریب لبریشن کے حامیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات مظفرآباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جنگ بندی لائن کی طرف مارچ کرنے والے ایک قوم پرست کشمیری تنظیم کی حامی سینکڑوں افراد اتوار کے روز کنٹرول لائن پر دھرنا دینے میں کامیاب ہو گئے۔ لبریشن فرنٹ سردار صغیر خان گروپ کے ہزاروں حامیوں نے ہفتے کے روز پاکستانی کشمیر کے جنوبی ضلع راولا کوٹ سے جنگ بندی لائن کے مقام تتری نوٹ کی طرف مارچ شروع کیا تھا، جن کا جنگ بندی لائن سے چند کلومیٹر دور دیوار ہندی کے مقام پر پولیس سے تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف درجنوں افراد زخمی ہو گئے، جن میں پولیس کے 19 اہلکار اور کئی مظاہرین شامل ہیں۔ اس موقع پر موجود راولا کوٹ کے صحافی خورشید بیگ نے وائس آف امریکہ کو صورتحال کے بارے میں کچھ یوں بتایا۔
جی انہوں نے آگے کھادہ تال گا کے اور پولیس کی باری میں اپنی چیز کاٹے کھڑی کر کے روکا ہوا تھا۔ وہاں پہ جو جے کے ایل ایس کے چیئرمین ہے سردار سعید خان، انہوں نے جو ہے تو پورا امن دھرنے کا اعلان کیا۔ وہ لڑکے ذرا سے مسائل ہو گئے تھے اور پولیس والے بھی ذرا آپ کو پتا ہے شارٹ کر لیتے وہاں سے شیلنگ۔
پولیس حکام کے مطابق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اپنے دھڑے کے سربراہ اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ اتوار کے روز ایل او سی تتی نوٹ کے مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جہاں انہوں نے بھارتی کشمیر میں جاری کرفیو کے خلاف دھرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ بھارتی کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مختلف سیاسی اور مذہبی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی طرف سے ایل او سی کی طرف مارچوں کا سلسلہ جاری ہے، اور حکومت کی طرف سے مظاہرین کو ایل او سی کے قریب جانے سے روکا جا رہا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سینئر وزیر طارق فاروق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت نیتے افراد کو بھارتی فوج کے سامنے جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔
یہ جو متنازع ریاست ہے اس میں آ جا سکتے ہیں، لیکن ان کو بھارتی فوج کے سامنے کھڑا کر دینا یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ البتہ جو ہے وہ مظاہرے ضرور ہونے چاہیے، مظاہرے لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ پرامن رہنے چاہیے، اور یہ جو کراسنگ ہے ایل او سی کی، اس کو جو ہے ابھی تک لیڈرشپ نے پراپرلی، جتنی لیڈرشپ آزاد کشمیر کی، انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کب کرنی ہے، کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ اس کی کئی جو بڑی سینسیٹیو جو ہے کئی وجوہات ہیں جن کو دیکھا جانا ضروری ہے۔ تو ان حالات میں میری تو اپیل ہے کہ جتنے مرضی چاہیں دھرنے دیں لوگ، جتنے مرضی چاہیں جلوس نکالیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے آپ کو بھارتی افواج کے سامنے ایکسپوز مت کریں، وہ چونکہ بہت ہی درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
پاکستان کی طرف سے ہفتے کے روز بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے جمعے کے روز پاکستانی کشمیر کے کھوئی رٹا سیکٹر میں ایل او سی عبور کرنے کی کوشش کرنے والے مظاہرین پر فائرنگ کے اس واقعے کے خلاف احتجاج کیا گیا، جس میں 4 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ روشن مغل، اردو ویو اے، مظفر آباد۔
اور اب چلتے ہیں عالمی خبروں کی جانب۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ سن 2015 میں امریکہ کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یورینیم کی افزودگی 20% سے بڑھانے کے سمیت جدید سینٹری فیوجز بھی تیار کرے گا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے حال ہی میں جوہری معاہدے کے ضامن یورپی ملکوں کو مزید 60 روز کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ وہ اسے امریکی پابندیوں کے اثرات سے بچائیں۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد پابندیوں کی وجہ سے اس کی تیل کی برآمدات میں 80% تک کمی آئی ہے۔ ईरान की जौहरी एजेंसी के तर्जमान बहरोज ने हफ्ते को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ईरान ने जौहरी तहकीक का अमल दोबारा शुरू करने के अलावा जदीद सेंट्रीफ्यूजेस की तैयारी पर भी काम शुरू कर दिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान 2015 में तय पाने वाले माहदे के तहत ईरान को जौहरी प्रोग्राम महदूद करने के एवज तेल बरामद करने की इजाज़त दी गई थी। ताहम गुज़िश्ता साल अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस माहदे को नाकिस करार देते हुए यकतरफा तौर पर उससे दस्तबरदार हो गए थे। रवां साल मई से अमरीका ने ईरान पर दबाव डाल रखा है कि वह अपने बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात के अलावा खित्ते में अस्करियत पसंद ग्रुपों की हिमायत छोड़ दे। और समंदरी तूफान डोरियन कनाडा के साहिली इलाके एटलांटिक से टकरा गया है। तेज़ हवाओं के बारिश हेलीफैक्स के इलाके में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। डोरियन के साथ चलने वाली हवाओं की रफ्तार अब ज़्यादा से ज़्यादा 140 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि बहामास में ये तूफानी झक्कर 285 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। बहामास में हलाकतों की तादाद बढ़कर 48 हो गई है। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि मलबा हटाए जाने के बाद मजीद लाशें मिल सकती हैं। जुमे के रोज़ समंदरी तूफान नॉर्थ और साउथ कैरोलिना के साहिल इलाकों से टकराकर मैसा की चूसिट की तरफ बढ़ गया था, जिसके बाद ये कैनेडा के साहिल से टकराया है। और बरतानिया की खातून वजीर बराए वर्क एंड पेंशन ने ब्रेग्जिट पर वजीर आजम बोरिस जॉनसन की पॉलिसियों पर एहतजाज करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। बरतानिया के वजीर आजम जॉनसन ने ऐलान कर रखा है कि वह हर सूरत डील या बगैर डील 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएंगे। बरतानवी वजीर आजम की इस पॉलिसी से उनकी अपनी पार्टी के अराकीन ने इख्तलाफ किया है, जिसकी वजह से वो बरतानवी पार्लियामेंट में अक्सरियत से महरूम हो गए थे। बोरिस जॉनसन ने ब्रेग्जिट से मुतालिक इनके मनसूबे की मुखालफत करने वाले 21 अरकान को पार्टी से निकाल दिया था। और हांगकांग में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरीन ने अमरीका के सदर ट्रंप से अपील की है कि वो हांगकांग को चीन के असर से आज़ाद करवाएं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इतवार को हांगकांग में मुजाहरीन ने अमरीका के कौंसल खाने की जानिब मार्च की। हज़ारों मुजाहरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर दर्ज था कि अमरीका हांगकांग के शहरियों की मदद करे। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। हांगकांग में रवां साल जून में शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में मुसलसल शिद्दत आ रही है। ये मुजाहरे हांगकांग की हुकूमत की जानिब से मुलजिमान की चीन को हवालगी से मुतालिक एक कानूनी बिल मुतारिफ करवाने पर शुरू हुए थे। तो ये थी कुछ खबरें बैन अल-अक़वामी शोबे से।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
तो समीन, ये महीना है मुहर्रम हराम का, और इसी महीने की मुनासबत से हमने इंतखाब किया है एक ऐसे शायर से आपको मुतारिफ करवाने का जो मज़हब के लिहाज से हिंदू हैं, लेकिन उनकी शोहरत जो है वो हम्द, नात गोई, मनकबत और सलाम कहने में है। इनका नाम है विजेंद्र प्रसाद और अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं, लेकिन इससे पहले कि इनसे बात करें, एक झलक उनकी शायरी से।
ए खुदा, तुझसे तो कोई बात छुप सकती नहीं, तू तो लामहदूद ठहरा है हर एक हद के लिए। क्या ना सीने से लगाया है तेरे कुरान को, क्या नहीं जागे हैं हम तेरे मोहम्मद के लिए। क्या नहीं जागे हैं हम तेरे मोहम्मद के लिए। वेद, गीता, बाइबिल, कुरान तो हैं रोशनी। वेद, गीता, बाइबिल, कुरान तो हैं रोशनी। रोशनी पाकर भी क्यों भटका हुआ इंसान है, किस लिए झुकते हैं हम जुल्मो सितम के सामने। क्या बचेगा हम पे जब रुखसत हुआ ईमान है।
ये आवाज़ थी प्रोफेसर विजेंद्र प्रवास साहब की, जो मेरठ से हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। विजेंद्र प्रवास साहब बहुत ही मारूफ शायर हैं भारत के, और इन्होंने नात पर जो काम किया है वो बहुत ही काबिल ज़िक्र है और मुमताज़ मकाम रखता है उर्दू अदब में। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आम तौर से, क्योंकि हमारे प्रोग्राम पाकिस्तान में ज़्यादा सुना जाता है, तो एक तसव्वुर ये पाया जाता है कि शायद नातिया शायरी, हमदिया शायरी, मनकबत, सलाम, ये सब ان شعرا سے مخصوص ہیں جن کا مذہب اسلام ہے، لیکن ان میں ایک ممتاز مقام وجندر پرواز صاحب کا ہے. آداب پرواز صاحب.
جی آداب. جی آداب.
بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اور
ہمارا بھی شکریہ.
تو آپ کہاں میرٹھ میں ہیں اس وقت؟
ہاں میں میرٹھ میں ہوں، یو پی میں، ہندوستان میں.
اچھا تو آپ انگریزی پڑھایا کرتے تھے؟
ہاں میں نے 32 سال 3 کالجوں میں انگریزی پڑھائی ہے.
اچھا
اور اب میں ریٹائر ہوں، اپنے گھر پر ہوں، شاعری میں ہوں، رات دن اسی میں میں تخلیق ہوں.
تو وجندر پرواز صاحب، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، آپ نے سننے والوں کو بتایا کہ ایک تصور یہ ہے ہمارے یہاں کہ اگر بھجن ہے تو وہ ضرور کسی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے شاعر سے مخصوص ہے، اور اس طرح نعتیہ، حمدیہ، سلام، یہ سب مسلمانوں سے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان میں بہت سے شعرا ہیں جن کا مذہب اسلام نہیں ہے، لیکن وہ بڑی کمال کی شاعری کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیے ایک تاریخ.
دیکھیے ایسا ہے، شاعری کا کوئی مذہب نہیں ہے. شاعری اسلام سے تعلق رکھے یا ہندوازم سے رکھے یا عیسائیت سے رکھے، شاعری تو انسانیت کا پیغام ہے. اور جو بھی ہمارے قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق جو بھی لوگ آئے یا ادھر بھی آئے، وہ سب پیغام انسانیت دے کے گئے. حسین صاحب، امام حسین آئے ہمارے، اور ہمارے پیغمبر نبی آئے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، سب نے انسانیت کا ہی ہمیں پیغام دیا. اور ہندوستان میں غیر مسلم شعرا کی بہت بڑی تعداد ہے. جگن ناتھ آزاد رہے ہیں، تلوک چند محروم ہیں، لبو رام جوش ملسیانی ہیں، عرش ملسیانی ہیں، بہت لوگوں نے شاعری پر کام کیا. ہریش چندر اختر ہیں، نعت میں بھی کام کیا، منقبت میں بھی کام کیا، سبھی طرح کام کیا، شاعری میں، غزل میں، نظم میں بھی کام کیا. تو مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا.
تو کیوں نہ اس آج کے دن کا آغاز ہم کرتے ہیں حمد سے، اگر آپ ہمیں سنائیں.
تو میں 2-4 شعر ایک حمد کے آپ کو سناؤں. مجھے تجھ پہ پورا یقین ہے، تو کرے گا دکھ کی دوا خدا، میں تیرے یقین کی آبرو، میری آبرو کو بچا خدا. میں تیرے یقین کی آبرو، میری آبرو کو بچا خدا. میں کہوں تو کیسے کہوں بھلا، کبھی اپنا جلوہ دکھا خدا. میں کہوں تو کیسے کہوں بھلا، کبھی اپنا جلوہ دکھا خدا. مجھے طور و موسیٰ کے حشر کا ہے ذرا ذرا سا پتا خدا. مجھے طور و موسیٰ کے حشر کا ہے ذرا ذرا سا پتا خدا. کی ایک شعر نعت کا، حمد کا شعر. میرے دل کی مجھ سے حفاظتیں، جو نہ ہو سکیں تو میں کیا کروں. میرے دل کی مجھ سے حفاظتیں، جو نہ ہو سکیں تو میں کیا کروں. یہاں ہاتھ ہاتھ میں سنگ ہے، میرے آئینے کو بچا خدا. میرے دل کی مجھ سے حفاظتیں، جو نہ ہو سکیں تو میں کیا کروں. یہاں ہاتھ ہاتھ میں سنگ ہے، میرے آئینے کو بچا خدا. اور چند میں آپ کو 2-3 مصرے اے نعت پہ میں آؤں جیسا.
جی ضرور.
اے مصطفیٰ رسول خدا سرور عظیم، اے مصطفیٰ رسول خدا سرور عظیم، یاد آ رہے ہیں آپ، یاد آ رہے ہیں آپ، محبت لیے ہوئے اپنے کرم کے گیسوئے انوار کھول دیں. در پر کھڑا ہوں بھیک کا کاسا لیے ہوئے، در پر کھڑا ہوں بھیک کا کاسا لیے ہوئے. یہ میں نے 2 شعر آپ کو سنائے. یہ ٹھیک اس حمد کے ساتھ ہی جڑے ہوئے شعر میں نے آپ کو سنائے، اس لیے پڑھے ہیں.
اچھا واقعہ کربلا پہ بھی آپ نے بڑی خوبصورت شعر کہے ہیں.
ہاں کربلا کے بارے میں میں نے ایک پوری کتاب بھی لکھی ہے.
جی
فی الحال مجھے 2 شعر اس میں آپ دیکھیے. دراصل شعر منقبت میں ہوں، کسی میں ہے، وہ کچھ ایسی بات کہی جانی چاہیے جو عام طور سے زیادہ تر لوگوں تک پہنچ کے دکھائی دے کہ ہاں ایک حقیقت یہ ہے. میں نے کہا ہے کہ ندیاں حسین کی ہیں، سمندر حسین کا، سب چیزیں انہی کی ہیں، انہی کی معرفت ہیں. ندیاں حسین کی ہیں، سمندر حسین کا، لختے جگر ہے پیاس سے پتھر حسین کا. ندیاں حسین کی ہیں، سمندر حسین کا، لختے جگر ہے پیاس سے پتھر حسین کا. جب ظالموں نے کاٹ کے ایک سمت رکھ دیا, جب ظالموں نے کاٹ کے ایک سمت رکھ دیا, شمس و قمر نے چوم لیا سر حسین کا, شمس و قمر نے چوم لیا سر حسین کا. اس طرح بہت ساری چیزیں میں نے کہی ہیں.
اچھا آپ کا یہ کمال بھی ہے کہ آپ کو کاغذ پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو یاد رہتی ہیں چیزیں.
کبھی نہیں پڑھا زندگی میں, اور مزے کی بات یہ میم میں نے 7-7 گھنٹے بھی اپنا کلام پڑھا ہے.
جی
بہت جگہ مجھے اسپیشلی بلایا جاتا ہے, ایک دو شاعر اور آتا ہے, اور 7 گھنٹے تک بھی میں نے کھڑا ہو کر کلام کو
بس پڑھا ہے. یہاں بھی آپ کافی دیر تک آپ کو بولنا ہے. تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ جو آپ کی ہوئی دلچسپی, جو آپ نے بات کہی صوفی سے درست ہے کہ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, لیکن ضروری نہیں کہ اس کو ایکسپریشن میں بھی ہم ڈھال سکیں. تو آپ نے جب اپنے اس عقیدت کو شکل دی نعت کی, تو پھر یہ کب سے سلسلہ شروع اور کیسے ہوا؟
فراق گورکھپوری کا ایک شعر یاد آتا ہے, مکتے کا شعر ہے ان کا, کہ یوں ہی فراق نے عمر بسر کی, کچھ غمیں جانا کچھ غمیں دوراں. تو یہ زندگی کی شروعات تو وہی ایک عشقیہ ماحول زندگی کا, ان چیزوں سے شروع ہوتے رہے, یہ درد دل کی طرف دوڑتے رہے, ذہن میں ان کا خوف بنتا چلا گیا. دل کا تو تعلق خوف سے ہوتا نہیں, کچھ
جی
ذہن میں بنتا چلا گیا. آتے آتے چیزیں کچھ حاصل ہو کچھ نہیں ہوئی, تمام چیزیں جھکتی چلی گئیں, پھر سماج آیا, زندگی آئی, تمام چیزیں آئیں, تو ان سب سے مل جل کر جو مل پایا وہ تمام شاعری میں آ گیا. یہ غزل بڑی سادہ سی غزل ہے, سادگی میں کچھ شعر ہو جاتے ہیں, سن لیجیے چند شعر آپ.
جی
ضبط کا پاس دلانے والے کیا ترکیب نکالوں میں, ضبط کا پاس دلانے والے کیا ترکیب نکالوں میں, آنسو پوچھوں دل کو تھاموں یا زنجیر سنبھالوں میں.
واہ واہ بہت.
ضبط کا پاس دلانے والے کیا ترکیب نکالوں میں, آنسو پوچھوں دل کو تھاموں یا زنجیر سنبھالوں میں. شعر سنیے, گہرا تیر لیے سینے میں کیسے بستی پار کروں, گہرا تیر لیے سینے میں کیسے بستی پار کروں, اور یہ بھیگا جسم لہو میں کس کے در پر ڈالوں میں.
واہ واہ بہت.
اور یہ بھیگا جسم لہو میں کس کے در پر ڈالوں میں. ایک شعر اور سنیے, خاص پہلو سے شعر کا ہے, ہر خنجر کی دھار لیے ہے تیری نظر کی باری کی, ہر خنجر کی دھار لیے ہے تیری نظر کی باری کی, ہر قاتل منصوب تجھی سے کس کا نام اچھالوں میں.
واہ واہ واہ.
ہر قاتل منصوب تجھی سے کس کا نام اچھالوں میں. ایک اور شعر دیکھیے, جتنے لوگ ملے بھوکے ہیں سب عزت افزائی کے, جتنے لوگ ملے بھوکے ہیں سب عزت افزائی کے, آخر اپنا چھوٹا سا سر کن قدموں میں ڈالوں میں.
واہ 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 بہت.
آخر اپنا چھوٹا سا سر کن قدموں میں ڈالوں میں. آخری شعر اس غزل کا پڑھ رہا ہوں میں, آخر اپنا چھوٹا سا سر کن قدموں میں ڈالوں میں. شعر کا ہے, چھوڑ کے تیری زلف کا سایہ اس دنیا کا ہو جاؤں, چھوڑ کے تیری زلف کا سایہ اس دنیا کا ہو جاؤں, ایک بیماری سے بچنے کو 100 بیماری پالوں میں, ایک بیماری سے بچنے کو 100 بیماری پالوں میں. مکتے کا شعر ہے, گھر گھر قاتل کی تائیدیں کون بچانے آئے گا, گھر گھر قاتل کی تائیدیں کون بچانے آئے گا, چاہے جتنا شور گلی میں اے پرواز مچالوں میں.
واہ واہ.
چاہے جتنا شور گلی میں اے پرواز مچالوں میں. یہ غزل میں نے آپ کو سنائی ہے.
بہت خوبصورت. میں بلکہ سوچی تھی, اور میری جو پروڈیوسر ہیں نیلوفر, انہوں نے بھی کہا کہ ان کی اردو کتنی اچھی ہے, اور اس کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں سمجھتے, ظاہر ہے ہندوستان میں اردو پیدا ہوئی ہے تو یہ تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہے اس بات پہ, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اب پروگرام وغیرہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ لفظ ہیں جو اب لوگ ادا نہیں کر سکتے, جیسے زے نہیں بول سکتے, تو کس طرح قائم رکھ سکے آپ اس چیز کو؟
ہاں دیکھیے ایسا ہے कि जो भी इंसान के अंदर है वो बाहर आएगा, वो कागज पे आएगा। अब कागज पे दिल की बात आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, और मसनवी चीजें लोग लिखते फिरें तो उससे तो देखो कोई चीज बनती नहीं है। उर्दू बहुत दिल की जुबान है, बहुत मिठास लिए हुए है, लताफत लिए हुए है, सदाकत लिए हुए है, और बहुत नाजुक है। इसमें गजल में को मैं वसीम बरेलवी से कह रहा था एक दिन, भाई है मेरे, बड़े भाई हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, कि गजल उतना बोझ बर्दाश्त नहीं करती जितना लोग उस पर डाल रहे हैं। दुनिया भर के उसमें मिस्टिसिज्म को भर दिया है, सिंबोलिज्म को दुनिया भर में उठाए फिर रहे हैं। सीधी सादी बात कहनी चाहिए।
मगर आप ही ने तो कहा है कि गजल की हिम्मतें देखो क्या क्या बोझ ढोती है।
बोझ ढोती है गजल की हिम्मत। ये वो बोझ जो है, हाँ। वो बोझ जो है वो एहसासात का बोझ है, अल्फाज का बोझ नहीं है। तो कहा तभी ये दुनिया पूरी एक जगह इकट्ठा होके मोहब्बत दे सकती है।
बस मेरी दुआ है कि आप जैसे लोग अगर हो जाए ना तो सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए दुनिया से। परवाज साहब ये बताइए कि आप जो लिखते हैं देवनागरी में लिखते हैं या उर्दू में?
ऐसा है, उर्दू मैंने किसी स्कूल में कभी नहीं पढ़ी। मेरी सब मेहनत अपनी प्राइवेट अपनी है, अपना सब मैंने सीखा है। उर्दू रस्मुल खत में मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ हिंदी में भी मेरी किताबें आती हैं, तो हिंदी में भी लिखता हूँ, उर्दू में भी लिखता हूँ।
अब वैसे आपको क्या नजर आता है उर्दू शायरी का मुस्तकबिल, क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारे लोग उर्दू जबान।
मुस्तकबिल बहुत बहुत खूबसूरत
नहीं है। पूरा सवाल ये है मेरा कि जाहिर है कि जो बच्चे अब जो ये नई नस्ल है, ये इनमें बहुत सारे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ सकते रस्मुल खत के लिहाज से।
थोड़ा रस्मुल खत में थोड़ी दिक्कत लोगों को इसलिए आ रही है, अब जो लोग उधर उर्दू में वो फारसी वाला रस्मुल खत सीख के आना चाहते हैं तो उसको सीखेंगे
जी,
उसको सीख रहे हैं लोग, खूब सीख रहे हैं उसे भी। और ये हमारी एक खुशकिस्मती है कि हमें कंप्यूटर पे भी वो मिल गया, आने लगता है, छप रहा है, सब ठीक हो रहा है। अच्छा। अब वो पहले तो उस तरह छपता नहीं है जैसे पहले छपता था, अब तो सब कंप्यूटर पे आया हुआ है, और उर्दू रस्मुल खत को भी सीख रहे हैं और हिंदी में भी लोग कह रहे हैं। लेकिन जहाँ तक उर्दू की सही ट्रेनिंग है, शायरी की सही ट्रेनिंग है, वो उर्दू रस्मुल खत से ही नजर आती है, जो मैंने महसूस किया है।
क्या देवनागरी में जे और फे जैसे लफ्ज ये नहीं है, अल्फाबेट नहीं है, मतलब किस वजह से जो अब नए बच्चे हैं, बच्चे या नौजवान, वो क्यों नहीं बोल सकते? जैसे गजल को वो गजल नहीं कह सकते
वो मैंने बता ना, उन्हें ट्रेनिंग नहीं है, जब उसकी वो तलफ्फुज इसलिए नहीं है कि उर्दू रस्मुल खत तो है नहीं।
अच्छा।
और अब उर्दू रस्मुल खत नहीं है, अब हिंदी वाले उसके नीचे बिंदी बिंदी लगाते हैं, उससे काम चलता नहीं है।
अच्छा। लेकिन दिलचस्पी मैं देखती हूँ कि जो यंग जनरेशन है उसको भी गजलों में बेपनाह दिलचस्पी है। कभी मैं ये जो
हमारे यहाँ देखिए उर्दू में भी जो उर्दू रस्मुल खत है उसमें भी जो हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी लोग हैं उनका तलफ्फुज भी ठीक। अब जैसे जाल है, जे है, जुआद है, जुआए है, इनका भी हम अलग अलग करके तलफ्फुज नहीं कर पाते हैं।
दुरुस्त।
हाँ, बस जे 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 में जे बोलते हैं, नहीं तो जाल का अलग। अब नजर है, जे नून जोए रहे नजर है, और नजर है नून जाल रहे है, तो दोनों को हम जे ही कह रहे हैं उसको, जबकि वहाँ जाल अलग है, जोए अलग
है। हाँ, बिल्कुल।
तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि सीख कर नहीं। आज शायरी में सीख कर कितने हैं? मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में अगर 150 शायर हैं तो सिर्फ 5 या 6 हैं जिन्होंने उसके रस्मुल खत के अलावा उसकी शायरी की कवायद को सीखा है, ग्रामर को सीखा है।
बिल्कुल।
जो सोशल रिफॉर्म है हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला का, जो सोशल रिफॉर्म है और उनकी जो सीरत है, उसी को नात में मैं महसूस करता हूँ, सुकून मुझे मिलता है। मैं मक्ते से साबित कर दूँ, शायरी को शायरी से साबित करूँ, मैंने कहा कि इस परवाज एक मक्ते का, मेरी नात का मक्ता है
जी।
इस परवाज के दिल में तुम्हारी कुछ तो मोहब्बत होगी ही, इस परवाज के दिल में तुम्हारी कुछ तो मोहब्बत होगी ही, जब जब नात के शेर कहे है दीवाना हो जाए है।
वाह वाह वाह।
इस दुनिया की भीड़ में जब जब मेरा दिल घबराए है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद तुम्हारी आए है। तुझको डर है मैं ना कहीं इस कैफ में शामिल हो जाऊं, और ही सबा तू लुक छुप करियूं सूए मदीना जाए है। किसमें हिम्मत है झुटलाए तारीख की सच्चाई को, तारा तारा मेरे नबी का नक्शे पा कहलाए है। इस परवाज के दिल में तुम्हारी कुछ तो मोहब्बत होगी ही, जब जब नात के शेर कहे है दीवाना हो जाए है। तो ये नात तो एक
एक एक तपस्या है, एक मदहत है। रसूल ताला ने काम किया है तो उस काम का, हम जब उनकी सीरत में जाते हैं, अभी पाकिस्तान के एक नाथ है मैम, वो आपने सुनी होगी, उसका एक चाहती में एक शेर सुना उसका, वो जिस वक्त हलीमा की गोदी महबूब खुदा से रोशन थी, उस वक्त हलीमा दाई के घर बार का आलम क्या होगा। फिर तो मैंने उस जमीन में अल्लाह का कर्म हुआ और नबी का इशारा, मैंने नात कही। दो तीन शेर आप सुन लीजिए
जी।
ये सोच के महवे हैरत हूँ, सरकार का आलम क्या होगा। ये सोच के महवे हैरत हूँ, सरकार का आलम क्या होगा। जब जिक्र से इतना लुत्फ मिला, दीदार का आलम क्या होगा। जब जिक्र से इतना लुत्फ मिला, दीदार का आलम क्या होगा। वो खून खराबे से बचकर हिजरत के लिए तैयार हूँ। ही इज एपोस्टल ऑफ पीस, पीस के लिए, अमन के लिए उन्होंने समझौता कर लिया, दस्तखत किए और मक्का को छोड़ के मदीना चले आए
जी।
वो खून खराबे से बचकर हिजरत के लिए तैयार हुए। उस जर्फ की उसत क्या कहिए, किरदार का आलम क्या होगा। और शेर का है कि जो कोहे गुरूर है इंसान को, इंसान के गुरूर का जो पहाड़ है, मैं जो कोहे गुरूर है इंसान को अल्फाज के पेशे से काटे, ऐ माहे अरब उन होंठों पर गुफ्तार का आलम क्या होगा।
वाह
वाह। ए माहे अरब उन होंठों पर गुफ्तार का आलम क्या होगा। जब भूख लगी बेचैन हुए तो पेट से पत्थर बांध लिए। जब भूख लगी बेचैन हुए तो पेट से पत्थर बांध लिए। अहबाब पे क्या बीती होगी, अग्यार का आलम क्या होगा।
वाह।
और शेर कहा कि जिस गार की खिलवत में उनकी जिब्रील से बातें होती थी, जिस गार की खिलवत में उनकी जिब्रील से बातें होती थीं, उस गार के जानो दिल सदके उस गार का आलम क्या होगा। और एक हिस्टोरिकल चीज मैंने कही है मैम इसमें, वो नमाज के लिए जा रहे इमाम हैं तो कांटा लगता है पाँव में, खून आता है, रुकते हैं। शेर देखे, किसी ने भी ये कहा नहीं होगा इस ख्याल को, मैंने कहा है, अल्लाह ने कहलवाया है। तो मैंने कहा है कि जो पाए मुबारक में चुभकर आका के लहू से सुर्ख हुआ, जो पाए मुबारक में चुभकर आका के लहू से सुर्ख हुआ, ऐ फसले बहारा तू ही बता उस खार का आलम क्या होगा।
वाह वाह वाह।
जो पाए मुबारक में चुभकर आका के लहू से सुर्ख हुआ, ऐ फसले बहारा तू ही बता उस खार का आलम क्या होगा। और आखिरी शेर का है कि जिस फर्श पे उनके पांव पड़े, जिस घर के नबी मेहमान हुए, जिस फर्श पे उनके पांव पड़े, जिस घर के नबी मेहमान हुए, क्या वजद में होंगे बामो दर दीवार का आलम क्या होगा। क्या वजद में होंगे बामो दर दीवार का आलम क्या होगा। और मक्ते का शेर हमने कहा है, आज फरिश्ते खुद आकर जिसके बच्चे को नहलाएं, परवाज फरिश्ते खुद आकर जिसके बच्चे को नहलाएं, उस माँ का मुकद्दर क्या कहिए, उस प्यार का आलम क्या होगा।
बहुत।
तो ये चंद चीजें हैं जो नात कहलवाती हैं
और जो कैफियत आप बता रही होती है।
अपनी मर्जी से कुछ नहीं है, अल्लाह का जो हुक्म है, जो उसकी कर्म फरमाई है, वही आती है। जो जिसे उसने जो बनाना चाहा बन गया, बस वही सब उसी का है जो है।
बिल्कुल। क्या पाकिस्तान कभी जाना हुआ आपका या नहीं?
नहीं, पाकिस्तान बहुत हसरत है, एक हसरत है, और चाहता हूँ ये दिल ही दिल में ना रहे, ये चाहता हूँ कोई सहारा मिल जाए तो मैं पाकिस्तान में खुलकर अपना कलाम पढूं।
अच्छा, एक आप तकलीफ कर सकते हैं, अगर आप अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लें, बाहर से शोर की बहुत आवाज आ रही है आपके घर में।
मैं जरा, अरे कहाँ गया पिंटो?
शामिल है
जी जी।
बड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि मैं आपसे कहूँ दरवाजा बंद कर दीजिए।
हाँ, वो दिल्ली से लड़का आ गया था जो इधर बैठा था।
अच्छा अच्छा।
तो वो दिल्ली हॉस्पिटल है हमारा, लड़का डॉक्टर है बड़ा भी वहाँ। बीच में एक नज्म है मेरी मैम, शायर
जी,
तो उसमें मैंने, बहुत सारे पूछते हैं शायर क्या है, शायरी क्या है, कैसे शुरू हुआ क्या, तो उसमें से बीच में से दो चार स्टेंजे में पढ़ रहा हूँ आपको।
अच्छा।
फूंक देते हैं नशे मन जो गुलिस्तान के लिए, 10-5 लाइन सुनिए आप
जी।
फूंक देते हैं नशे मन जो गुलिस्तान के लिए, क्या उन्हें फसले बहारा ने नवाजा है कहीं। खूने दिल जिनका झलकता है गुलों के रुख पर, उनके हिस्से में तो कांटों की चुभन तक भी नहीं। मेरी पूजा भी यही, मेरी नमाजें भी यही, मेरी पूजा भी यही, मेरी नमाजें भी यही, दर्द इंसान को अल्फाज में ढाले जाऊं, इनकलाबात की आशाओं को उम्मीदों को शेर की शक्ल में कागज पर उछा ले जाऊं। आह वो बज्म सुखन जिसको सजाने के लिए मीरो गालिब ने कलेजे का लहू तक भी दिया, आह वो फन जिसे गर्दों पे बिठाने के लिए जोश इकबाल ने हर दर्द को तस्लीम किया। ऐ मेरी फिक्र सुखन तू भी वफादारी से सिलसिला मेरे तखयल का जुड़ा रहने दे, ऐ मेरे दौर की तहजीब खुदा की खातिर कुछ भी ले ले तू मगर फन को बचा रहने दे, कुछ भी ले ले तू मगर फन को बचा रहने दे। सोचता हूँ यूं ही कब तक मुझे जीना होगा, जैसे इंग्लैंड में रोता रहा अंधा मिल्टन, सफहे आप पे जैसे हो किसी कीट्स का नाम, बिस्तरे खार पे जैसे किसी शैली का बदन, और यही सोच के फिर सोचना पड़ता है मुझे, और यही सोच के फिर सोचना पड़ता है मुझे, एक शायर के मुकद्दर में वफा है ही नहीं, आईना है दिले शायर तो जमाना पत्थर, इनके टकराव में जीने का मजा है ही नहीं। वरना क्या बात थी जिंदा में घुटे फैज का दम, वरना क्या बात थी जिंदा में घुटे फैज का दम, और जंजीर तबाही को निराला चूमे, सीनाए गंग पे हाथी का रखा जाए पाँव, एक वहशी की तरह रूस में पुष्किन घूमे। आखिरी मिसरे पढ़ूं, जिससे ताबिंदा हो ये पैकरे जुल्माते जहां, सोचता हूँ कि वो तनवीर कहाँ से लाऊं, देख कर जिसको रहे हक पे चलाए बशर, फर्ज इंसान की वो तस्वीर कहाँ से लाऊं।
वाह, तो परवाज साहब आपने वाकयात करबला तो नसर में लिखे हैं, तो आपने करबला के वाकयात पे कुछ और भी लिखा नज्म की सूरत?
हाँ, करबला के वाकयात पे तो मैंने काफी लिखा हुआ है, काफी लिखा है। देखो एक शेर में आपको सुना, यूं यूं करबला की खाक सजाई है ताक पर, यूं करबला की खाक सजाई है ताक पर, महसूस ये हुआ मेरे घर में हुसैन है। मैं अब बिल्कुल नया शेर है, देखिए। यूं करबला की ताक सजाई है, यूं करबला की खाक सजाई है ताक पर, महसूस ये हुआ मेरे घर में हुसैन है। एहसास उठाते हैं लताफत का गुलों की, ये शिमर वगैरह की तरफ शेर गया, एहसास उठाते हैं लताफत का गुलों की, मासूमों की लाशों से जमी पाटने वाले, दुनिया को मोहब्बत का सबक दे नहीं सकते, इंसानों को फसलों की तरह काटने वाले।
बहुत खूब,
हाँ, इंसानों को फसलों की तरह काटने वाले।
तो मैं ये समझ सकती हूँ कि जाहिर है कि आप जिस तरह के शायर हैं, तो रूहानियत का आप पे गहरा असर होगा, तो कोई ऐसा तजर्बा जो आपको हुआ हो, मतलब अपने सफ़र में, ये जो आप, क्योंकि मैंने सुना है कि आप ये कहते हैं कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ आपको हासिल हुआ वो इसी की देन है, आपने जो कुछ कहा, जो मौजू आपने चुना, उसने आपको अल्लाह ने फिर बहुत नवाजा उसके बाद, तो ये सच है? ये सच है।
देखिए ऐसा है, जैसे हमारे हजरत इमाम हुसैन और ये तमाम फैमिली की जो कुर्बानी है, ये और कुर्बानियों से बिल्कुल थोड़ा सेपरेट होकर चलती है कि दूसरे के यकीन पर ये शहीद हुए हैं, बुलाया गया फैसलों के लिए, बुलाया गया और बातों के लिए, और वो इतने फरेब और इतनी साजिशों से कत्ल कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है, पानी जबकि अल्लाह की दी हुई एक चीज है, और वहां भी वो चीज भी नहीं है, और भी लोग शहीद हुए, औरों ने भी जान दी है, लेकिन ये एक यकीन का कत्ल था, एक यकीन को खत्म किया गया, और इतना एक एक ऐसा हुआ कि मैं सारी दुनिया भी अगर रोए वक्त मुहर्रम पर, सारी दुनिया भी अगर रोए तो आंसू भी कम रह जाएंगे, वो भी कम है, इतना बड़ा जुल्म और इस तरह किया और इतना काम किया गया कि एक सारी दुनिया के लिए वो एक लीडरशिप ले रहे हैं, वो एक दो कौम से मत ताल्लुक नहीं रह गया, वो कौमों के दायरों से बाहर निकल के इतनी बड़ी करबला की जो हादिसात हैं, वाकियात हैं, वो किसी एक कौम या एक मजहब तक नहीं है, वो तो सबके हैं।
मेरी पूजा भी यही, मेरी नमाजें भी यही, दर्द इंसान को अल्फाज में ढाले जाऊं। ये थे भारत के एक मुमताज नातगो शायर वजेंद्र परवाज साहब, जो बात कर रहे थे तमाम मजाहिब के उस पैगाम पर जो सलामती, अमन और मोहब्बत से मुतालिक है। इसी पैगाम को दोहराया है भारत ही के एक इंतहाई मकबूल शायर अनवर जलालपुरी साहब ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है। गुज़िश्ता साल उनका इंतकाल हो गया। वो 2015 में मेरे प्रोग्राम कुछ तो कहिए में आए थे और उन्होंने बताया था कि उनका ख़ानदान मजहबी है, उनके वालिद खुद हाफिज़ कुरान थे। अनवर साहब ने ख़ास तौर पर बात की थी अपने एक इंतहाई अहम काम की, जो हिंदुओं की मजहबी किताब भगवद गीता के तर्जुमे से मुतालिक है। तो सुनते हैं उनके साथ गुफ्तगु से कुछ इक्तबास। मगरिब में तो लोगों ने किए हैं गीता के तर्जुमे, उर्दू में से पहले आपसे पहले किसी ने किया?
जब मैंने इसमें पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको बताऊं कि 1857 के बाद गीता के 24 तर्जुमे उर्दू में हो चुके हैं मंजूम
जी
शायरी में।
अच्छा।
और तकरीबन 69 तर्जुमे हैं जो प्रोज में हुए हैं। लेकिन ये सारा काम सहदा हिंदुस्तान में हुआ, जिसमें बड़ा नुमाया रोल लाहौर का रहा, अमृतसर का रहा, पाकिस्तान का रहा, दिल्ली का रहा। तो बहुत तर्जुमे हुए, लेकिन कोई तर्जुमा इसलिए अवामी शक्ल नहीं अख्तियार पाया कर पाया कि वो फारसी जदगी उसमें बहुत ज्यादा थी। मेरी शायरी जो है वो बहुत ही आसान जबान में है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि गीता में आत्मा और जिस्म के ताल्लुक का एक इजहार है, इसे आप सुनिए कि न ये आत्मा कत्ल करती कभी, न ये आत्मा कत्ल होती कभी, जन्म और मरण से है ये बाला तर, यही इसकी तारीफ है मुख्तसर, हमेशा से है और हमेशा रहे, चिराग ऐसा जिसकी न लौ बुझ सके, बदन कत्ल होता है हो जाने दो, सदा के लिए इसको सो जाने दो, मगर आत्मा है अजर और अमर, ये ब्रह्मांड सारा ही है इसका घर, बदन रूह की सिर्फ पोशाक है, वगरना ये तन तो फकत खाक है, लिबासे कोहन तो बदलना ही है, नया पहरहन फिर पहनना ही है, बदन त्याग कर जाने जाती कहाँ, नया ढूंढ लेती है कोई मकाम। ये तर्जुमा मैंने किया आत्मा और शरीर के ताल्लुक का, यानी रूह और जिस्म के ताल्लुक का जो तर्जुमा हुआ वो ये हुआ। इसे हट के मैं बताऊं आपको, इसमें एक बड़ा मशहूर श्लोक है गीता का, यदा यदा ही धर्मस का एक फलसफा है कि जब जब दुनिया में धर्म को नुकसान पहुंचता है, शराफत जो है वो खतरे में पड़ जाती है, इंसानियत का चेहरा जो है वो उसकी चमक खत्म होने लगती है, तब तब मतलब हिंदुस्तान के कदीम फलसफे की रोशनी में भगवान जो हैं वो स्वयं जन्म लेते हैं, इंसान की शक्ल में वो खुद पैदा हो जाते हैं। तो उसको जरा सा सुनिए कि फराइज से इंसान हो बेजार जब, फराइज से इंसान हो बेजार जब, हो माहौल सारा गुनहगार जब, बुरे लोगों का बोल बाला रहे, न सच बात को कहने वाला रहे, कि जब धर्म का दम भी घुटने लगे, शराफत का सरमाया लूटने लगे, तो फिर जग में होना है जाहिर मुझे, जहां भर में रहना है हाजिर मुझे, बुरे जो हैं उनका करूं खात्मा, जो अच्छे हैं उनका करूं मैं भला, धर्म का जमाने में हो जाए राज, चले नेक रस्ते पे सारा समाज, इसी वास्ते जन्म लेता हूं मैं, नया एक संदेश देता हूं मैं।
गीता कई हजार साल पुरानी किताब है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज की ज़िंदगी में भी जिन बातों की ज़रूरत है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि कदीम पुराने हिंदुस्तान का जो ज्ञान है, जो इल्म है, जिसका ताल्लुक ज़मीन से भी है और आसमान से भी है, जिसका ताल्लुक इंसानों से भी है, देवताओं से भी है, और जन्नत और जहन्नम से भी जिसका ताल्लुक है, आखिर उस ज़माने में ये बातें जो सोची गई थीं वो आज के ज़माने में कितनी कारामद हैं। गीता का पहला श्लोक ये है कि अंधे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, बताओ युद्ध क्षेत्र और धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडव के बेटों का क्या हाल है। तो मैंने यूं बात शुरू की कि धृतराष्ट्र आँखों से महरूम थे, धृतराष्ट्र आँखों से महरूम थे मगर ये न समझो कि मासूम थे, उन्हें भी थी ख्वाहिश कि दुनिया है क्या, अंधेरा है क्या और उजाला है क्या। वो एक शख्स संजय पड़ा जिसका नाम, वही उनसे आखिर हुआ हम कलाम, उसे रब ने ऐसी नज़र बख्श दी कि बिन देखे हर एक शय देख ली। धृतराष्ट्र राजा भी थे बाप भी, समझते थे वो पुण्य भी पाप भी, मोहब्बत से बेटों की सरशार थे, अजब तरह के वो भी किरदार थे। उन्हें भी थी ख्वाहिश कि सब जान लें, सभी लड़ने वालों को पहचान लें। कहानी तो संजय सुनाता रहा, है मैदान में क्या बताता रहा। वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वो मैदान जो था जंग ही के लिए, वहीं से जले धर्म के भी दिए, वहीं से जले धर्म के भी दिए। गीता की यही महानता है कि मैदान जंग से वो अमन की फसल पैदा करता है। ये गीता जैसे ग्रंथ की ये महानता है कि शांति वहाँ से पैदा होती है जहाँ जंग हो रही है, प्यार की बात वहाँ से सिखाई जाती है जहाँ लड़ाई हो रही है। यही गीता की बड़ी महानता है।
तो स्वामी, ये थे भारत के एक इंतहाई मकबूल शायर मरहूम अनवर जलालपुरी साहब, जिन्होंने हिंदुओं की मजहबी किताब भगवद गीता का मंजूम तर्जुमा किया है।
अब हम शामिल करेंगे आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम में। हमारी फोन लाइंस खुली हैं, डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 0800-777-8789। तो फिर कॉल कीजिए और बन जाइए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा।
तो स्वामी, आज क्योंकि हमारे प्रोग्राम ज़्यादातर रिकॉर्डेड थे तो आज तो हम आपको शामिल नहीं कर सके, लेकिन आप बिल्कुल हमारे इस प्रोग्राम में टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और अगर भारत में जहाँ ये टोल फ्री नंबर नहीं है, अगर आप सिर्फ एक चंद सेकंड की कॉल करके अपना नंबर हमें दे दें तो हम खुद आपको कॉल कर लेंगे। अब एक और मौजू की तरफ चलते हैं। महकमा सेहत के अहदेदारों ने पाकिस्तान के शहर कराची और जनूबी वजीस्तान में पोलियो से दो और मरीजों के मुतासर होने की तस्दीक की है, जिससे साल मुतासर मरीजों की तादाद 62 हो गई है। सबसे बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा में 42 है, जिसकी असल वजह इनकार करने वाले वालदैन हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हिदायत पर इनकार करने वालदैन के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने के लिए राज़ी करने की आइंदा नवंबर से मुहिम शुरू की जा रही है। तो सामिन, तफसील तो अभी आप पेशावर से शमीम शाही से सुनेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि कभी दुनिया में ऐसा भी हुआ है कि आप अपने बच्चों को सेहतमंद रखने से इनकार कर दें और हुकूमत जो है आपको राज़ी करने की कोई मुहिम शुरू करे? ज़रा तसव्वुर तो कीजिए कि मफलूज बच्चा किसकी तकलीफ का सबब बनता है, सारी ज़िंदगी किस तरह आप आंसू बहाते हैं अगर आपके बच्चे की मफलूज हो जाए, वो चल ना सके, उसके हाथ काम ना कर सके। प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाइए। और चलिए सुनते हैं पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट।
महकमे सेहत के अहदेदारों ने इतवार के रोज पोलियो से दो और बच्चों के मुतासर होने की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क भर में पोलियो से मुतासर मरीजों की तादाद 62 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 46 हो गया है। वजीर आजम के इंसदादी पोलियो के लिए फोकल पर्सन बाबर बिन अता ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया।
जी, आज दो पोलियो केसेस पाकिस्तान ने मजीद रिपोर्ट किए हैं, एक कराची से और एक जनूबी वजीरिस्तान से। दुख की बात है कि पाकिस्तान में जितने भी पोलियो केसेस आ रहे हैं उसमें बेशतर की तादाद है जिसमें वालिदैन झूठ और जालसाजी पे मबनी प्रोपेगेंडे की वजह से जो है वो अपने बच्चों को खतरों से महरूम रखे हैं। और ये इस दफा जो केसेस आए हैं दोनों में यही हुआ है कि बच्चों ने पोलियो से बचाव की खुराक नहीं ली हुई।
बाबर बिनता का कहना है कि जब तक मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने के अमल को यकीनी नहीं बनाया जाए तब तक पोलियो की जरासीम पर काबू पाना मुश्किल है। अफगानिस्तान से मुल्हिका जनूबी वजीरिस्तान में लगभग 3 साल के वक्त के बाद पहली बार पोलियो से एक 10 माह की बच्ची मुतासिर हुई है, जिसके बारे में भी हुक्काम का कहना है कि उसको पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलवाए गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों बिलखसूस बन्नू डिवीजन में शामिल अजला शमाली वजीरिस्तान और लेकी मरवत में रवा साल सबसे ज्यादा 30 केसेस सामने आए हैं। पिशावर के एक सीनियर खातून साहबी शाहिदा परवीन ने कहा कि हुकूमत को इंसदादी पोलियो मुहिम को मुअस्सर बनाने की जरूरत है।
अगर हम گزشتہ سالوں پہ نظر ڈالیں تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پولیو کے حوالے سے بڑی مؤثر مہم چل رہی تھی اور اس کے حوالے سے امید بھی کی جا رہی تھی کہ آئندہ ایک دو سالوں میں یہ پاکستان سے یہ جو پولیو ہے وہ مکمل ختم ہو جائے گا. لیکن جو اس سال میں جس ان کا واقعہ آیا ہے, ماسٹر سیل کا واقعہ ہے, خاص طور پہ 22 اپریل کو جو ہوا, اس نے پولیو پروگرام کو خاص طور پہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور اس میں ہم دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی والدین کی جنہوں نے خوف کے مارے اپنے بچوں کو پولیو پلانے سے, پولیو کی ویکسین پلانے سے انکار کیا ہے.
بابر بناتا نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ہدایات کے مطابق انسدادی پولیو مہم کو مؤثر بنانے کے ایک منصوبے پر کام جاری ہے.
وزیر اعظم پاکستان نے بھی اب بذات خود رائٹنگ میں آرڈرز دے دیے ہیں کہ نومبر میں ایک انتہائی اعلیٰ سطح کی مہم جو نومبر, دسمبر, جنوری, فروری اور مارچ تک چلے گی اس کا آغاز کیا جائے اور آپ کو زبردست نتائج لے کے دکھائیں گے نومبر کے بعد.
بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے سے انکاری والدین کے علاوہ انسدادی پولیو مہم سے وابستہ محکمہ صحت کے اہلکاروں اور رضاکاروں پر ہونے والے ہلاکت خیز حملے بھی حکومتی اداروں کے سامنے ایک اہم مسئلہ ہے. چند روز قبل پشاور کے نواحی علاقے پشتخارا میں بھی ایک خاتون اہلکار کو بھی نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
سمین, میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. میں نے کافی دن تک کام کیا پولیو کے بارے میں آگہی پھیلانے کے لیے, ریڈیو پروگراموں کے لیے. میں بہت ساری ان لوگوں کو جانتی ہوں جو والنٹیئرز ہیں, ورکرز ہیں. آپ کا خیال ہوگا شاید انہیں بڑی خطیر رقومات ملتی ہیں جن کے لیے وہ آپ کے دروازے پر بچوں کو پولیو قطرے پلانے آتی ہیں. یقین مانیں ان میں سے بیشتر کو مہینوں تنخواہ بھی اس زمانے میں نہیں ملتی تھی اور وہ پھر بھی ماری ماری پھرتی تھیں کہ آپ کے بچوں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے پلا سکیں. تو انہیں قتل کرنے کے بجائے, انہیں ہلاک کرنے کے بجائے ان کی عزت کیجیے اور اپنے دروازے انہیں کھولیے تاکہ وہ آپ کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا سکیں. تو بہرحال یہ پاکستان کے میڈیا کا بھی کام ہے کہ اس بارے میں آگہی پھیلانے کے لیے کام کرے. اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے انٹرویو کی جانب جو لکھنؤ میں سہیل کاکوروی صاحب کا ہے. انہوں نے بڑے متنوع موضوعات پر کام کیا ہے, لیجیے سنتے ہیں. اچھا, ایک آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا عام نامہ, تو یہ بڑی مجھے ایک دلچسپ سی بات لگی تھی. عام نامہ
بالکل عجیب واقعہ ہے اس کا. تو ایک دن میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ ایک فوٹو پڑی ہوئی ہے, تو اس میں پروفیسر شارد زدولوی, بڑے تنقید نگار ہیں, وہ اس میں نظر آ رہے تھے. ایک عام ان کے ہاتھ میں تھا, بینر لگا ہوا تھا عام اور غالب. وہ لکھنؤ میں ایک آموں کی دعوت ہوتی ہے ہر موسم میں جس کا نام ہے عام اور غالب. تو بالکل بے ساختہ ایک شعر ہوا کہ پہلے لکھتے تھے عام اور غالب, اب لکھا جائے عام اور شارد. پھر میں نے اس میں 5-6 شعر کہے مقطع سمیت اور اس کو میں نے مختلف اخبارات میں بھیج دیا. پھر وہ تقریباً ہندوستان میں حیدرآباد اور جہاں چھپے بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا. مجھ سے یہاں لکھنؤ میں شاعر ہیں بشیر فاروقی صاحب, وہ میرے پاس آتے ہیں, میرے والد کے شاگرد بھی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کو تھوڑا بہائیے. اب وہ اس میں یہ ہونے لگا کہ پھر شعر بہت سے چلے گئے پھر ناموں کے ساتھ عام, اور اس میں 600 سے اوپر شعر ہیں اور ہر شعر میں عام ضرور لفظ عام ضرور آیا.
اب کتنے نام ہیں, کتنے آموں کے نام ہیں, قسمیں کتنی ہیں؟
اب نام کا تو دیکھیے میں اس وقت کاؤنٹ نہیں کر پاؤں گا, نام بہت ہیں.
اچھا,
اس میں تقریباً 100 صفحے تو ایسے ہیں جن میں ناموں کے ساتھ عام ہیں.
اچھا,
اور اس کے بعد پھر اس کی جو غذائی حیثیت ہے عام کی, اور اس کے جو چیزیں اس کو ہضم کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو مارکیٹ میں اس کی کتنی کھپت ہے, یہ سب شعر میں کہا گیا ہے. اور یہ اچھا مسنوی کی وہ بہر ہے
تو سنائیے نا, کچھ ہمیں سنائیے.
عام کھاتا ہوں لیکن نام خدا, میں محمد کہوں ایک ادنا گدا, عام ہے نعمت خدا کا ظہور, واسطہ ہے جسے مکمل نور. تو اس طرح شعر کہتے کہتے اس کے بعد پھر میں ناموں پہ آ گیا. لوگوں کے نام جو لکھنؤ کے شعرا ہیں خصوصاً, یا ادیب ہیں, اور باقی میرے ملنے والے جو تھے ان کے نام آتے چلے گئے اس کے اندر. میں ابھی سناتا ہوں آپ کو. جیسے کہ لائے ہیں آم میرے گھر فیروز, یہ عمل ہے بہت سبق آموز. اپنے حیدر حبیب علوی پر عام کرتا ہے خوب جم کے اثر. وہ مسعود الحسن ہے عثمانی, چاہے وہ عام کی فراوانی. جو ظفر ہے نہال کا بیٹا, عام کے بیچ ہی پلا وہ بہا.
واہ واہ.
اب ایک چشمے کی دکان ہے, اس کے مالک ہیں اسرار صاحب, میرے بہت قریبی دوست ہیں. تو ان کے لیے شعر ہے کہ آپ چشمے سے دیکھیے اسرار, عام پر آ گئی ہے کیسی بہار.
واہ واہ. لیکن تو سامعین, اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. عام نامہ جاری رہے گا آئندہ کسی پروگرام میں تفصیل سے. شہناز عزیز آپ سے اجازت چاہے گی. ہمارے پروگرام کی پروڈیوسر یاسمین جمیل تھیں, اور آپ سے آئندہ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.